तो ये श्लोक है भागवतम के पांचवे स्कंद के 12वें अध्याय में। तो मैं इंग्लिश में पढ़ू क्योंकि मेरे पास हिंदी किताब नहीं है। Simply by associating with exalted devotees, anyone can attain perfection of knowledge, and with the sword of knowledge can cut to pieces the illusory associations within this material world. Through the association of devotees, one can engage in the service of the Lord, your hearing and chanting, Sharanam Kirtanam. Thus, one can revive his dormant Krishna consciousness, and sticking to the cultivation of Krishna consciousness, return home back to Godhead even in this life. तो ये जो श्लोक हमने पढ़ा ये भागवतम के पांचवें स्कंद में है। आप सब जानते हो कि श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद है, कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। तो और श्रीमद् भागवत द्वारा हमें सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो शिक्षा जिसके द्वारा भगवान के शरणागत हो सको। तो यहाँ जद महाराज रघुनाथ कह रहे हैं कि भक्तों की संगत में रहने से हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के तलवार से हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं और भक्ति योग के माध्यम से जो हमारा भौतिक आकर्षण है वो नष्ट होता है। तो भगवान कह रहे हैं क्या कि भक्तों की संगत में रहने से हमारे शास्त्रों में इस विषय पर बल दिया गया है कि हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। ये जो हमने श्लोक पढ़ा है आज इसका उच्चारण कौन कर रहे हैं? जद भारत कर रहे हैं। जद भारत कौन थे? एक ब्राह्मण थे। आज से हजारों साल पूर्व पृथ्वी पर एक राजा थे जिनका नाम था महाराज ऋषभदेव और भगवान ऋषभदेव के 100 बेटे थे। आपको 100 बेटे कैसे? भगवान के लिए क्या असंभव है? हम सब भगवान की औलाद हैं। और उन्होंने अपने पुत्रों को आध्यात्मिक उपदेश दिया। हम देहा देहा बाजम लोके, उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन जो प्राप्त होता है इसका उपयोग हमें पशुओं के समान नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग हमें करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। तो इनके 100 बेटे थे जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? भारत महाराज। तो भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं और उन्होंने ये दावा लिखा कि मैं अवतार हूँ। उन्होंने 100 पुत्रों को आध्यात्मिक शिक्षा दी। भगवान ऋषभदेव जी ने कहा था अगर कोई व्यक्ति माता या पिता अपनी औलाद को धार्मिक ज्ञान नहीं दे तो वो गलत कार्य कर रहा है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए या पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपनी औलाद को काम भेज सके, भगवान के धाम भेज सके। तो महाराज भारत भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे और महाराज भारत ने पूरे पृथ्वी पर, आज अगर आप भारत शब्द का उपयोग करो तो उसका मतलब है इंडिया, पर एक समय पूरे प्लेनेट पूरे ब्रह्मांड का नाम क्या था? भारतवर्ष। एक ही राजा था पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो भारत महाराज ने पूरे पृथ्वी का राज्य किया था हजारों सालों के लिए और फिर उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े बेटे को सौंपी। वो गए जंगल में भगवान का चिंतन करने। आजकल तो विश्व में जंगल भी खत्म हो रहे हैं खास करके भारत में। तो भारत महाराज गए थे जंगल में। एक दिन वो जंगल में बैठे थे तो उन्होंने देखा एक हिरनी पीछा एक शेर कर रहा है और वो हिरनी घबरा रही थी और उसके घर में बच्चा था। तो हिरनी ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारी शेर से बचने के लिए, तो क्या परिणाम हुआ, हिरनी मर गई, बच्चा बच गया। तो महाराज भारत सोचने लगे शायद भगवान की इच्छा है कि मैं इस हिरन की देखभाल करूं बड़े प्रेम से, और इतना आकर्षण हो गया इस हिरन के प्रति कि एक मिनट के लिए भी हिरन अगर नजरों से दूर होता था तो वो घबरा जाते थे। जैसे एक माता के लिए अगर छोटा बच्चा एक मिनट के लिए भी नजरों से दूर हो तो माता घबरा जाती है। तो एक दिन वो हिरन महाराज के नजरों से दूर था, कहाँ चला गया पता नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भवान, जहां आपका मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। अगर मान लो आप मृत्यु के समय सोच रहे हो कृष्ण बलराम का, राधा गोकुल नंदा का, घोनिताय का, तो क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, अगले जीवन में भी कहां भगवान के धाम जाओगे। मान लो आप मृत्यु के समय सोच रहे हो मैंने इतनी बड़ी कोठी बनाई बीच में, इतनी मेहनत का पैसा खर्चा है, पर मुझे वहां रहने के लिए सिर्फ 40 साल मिले, कम से कम 60 साल तक मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए, पर भगवान इतने दयालु हैं आपको उसी घर में जन्म मिल जाएगा, पर वाले के रूप में नहीं, किस रूप में सुनना चाहते हो, सुना जाए कोई चीटी या कीड़े के रूप में, आप उसी घर में रह रहे हो पर अलग रूप में। और मान लो जैसे भारत में आजकल लोगों को क्रिकेट का बहुत शौक है, थोड़ा शौक है, मॉरिशस में भी क्रिकेट खेलते हैं, हाँ नहीं, भारत में तो आप जानते हो क्रिकेट विश्व का धर्म, देश का धर्म बन गया है। तो मान लो आप मृत्यु के समय सोच रहे हो हमारी भारत की सेना टीम जीती नहीं मैच, तो अगले जन्म में क्रिकेट के मैदान में घास बन जाओगे। जहां आपका मन होगा मृत्यु के समय है उस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग तैयारी करो अभी से, तो आप कहोगे मृत्यु के समय तो हम अवश्य ही कृष्णा का सोचेंगे, अब हमें दुनियादारी का सोचने दो। पर मृत्यु के समय भी आपका मन वहां ही होगा जहां की आपका अभ्यास रहा है जिंदगी भर, ये है प्रकृति का नियम। इसलिए शास्त्र में कहा गया है अंते नारायण आगे मृत्यु। इस प्रकार की योजना करो कि मृत्यु के समय आपका मन कहाँ होगा, नारायण के चरणों में। आप ऐसे कितने भक्तों की इच्छा है कि मृत्यु के समय आपका मन भगवान के चरण कमलों में जुड़ा हो, सबने तो हाथ नहीं उठाया। नरसिंह कहते हैं कितने भक्तों की इच्छा है कि मृत्यु के समय अब भगवान का स्मरण कर सको, कोई नहीं, आप सबकी इच्छा है। तो तैयार करोगे, तैयारी करोगे तो संभव हो पाएगा। तो जहां मृत्यु के समय मन है उस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। और प्रकृति का नियम है जहां आपका मन रहा है जिन विषयों पर जिंदगी भर, उसी विषय के चिंतन होएगा, होएगी मृत्यु के समय। तो महाराज भारत उस हिरन को ढूंढ रहे थे, वो ढूंढते ढूंढते क्या हो गया, उनकी मौत आ गई। मौत का कुछ पता रहता है, पदम पदम याद पे बादाम ना देशम, कदम कदम पर खतरा है। तो अगला जन्म भारत महाराज को ग्रहण करना पड़ा, किस रूप में, हिरन के रूप। पर भगवान गीता में ये भी कहते हैं मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कौन थे प्रतिचार ही नाम है भक्त प्रणचति। हे अर्जुन तुम सारे विश्व को ये सूचना दो क्या कि मेरे भक्त की सुरक्षा हमेशा होती है। तो भगवान अपने भक्तों को ही जिम्मेदारी देते हैं उनके साथ लीला भी निभाने के लिए, भगवान अपने भक्तों के असली सुरक्षक हैं। तो जब महाराज भारत हिरण बन गए थे तो उन्हें ज्यादा समय इस देह में नहीं काटना पड़ा और जल्द उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण खानदान में जिसमें उनका नाम क्या था, जत भारत। जत भारत समझ गए थे क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने गलती की। क्या थी गलती? पहली गलती ये थी कि हिरण के प्रति बहुत गहरा आकर्षण हो गया, तो उन्होंने निर्णय कर लिया समाज में ऐसा व्यवहार कि मैं गूंगा हूं और बहरा हूं। गूंगे बहरे थे नहीं पर वैसा व्यवहार था क्योंकि वो समाज के दोषों से बचना चाहते थे और समाज की प्रजल्पा से बचना चाहते थे। तो जब भारत के माता थी, पिता था, कई भाई भी थे, पिता ने बहुत प्रयास किया कि जत भारत को भौतिक शिक्षा दी जाए पर उनकी कोई रुचि नहीं थी। समाज में व्यवहार था जैसे वो गूंगे हैं और बहरे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे किसी प्रकार से किसके साथ किसी भौतिक विषय में जुड़े। तो जत भारत जुड़े हुए थे भगवान के चिंतन में। उनके सौतेली भाइयों ने बहुत प्रयास किया उन्हें शिक्षा देने के लिए, उनके मन में शिक्षा उनके मन में बिल्कुल पढ़ाई के में कोई रुचि नहीं थी। एक समय जत भारत अपने पिता के देहांत के पश्चात सौतेली भाइयों ने उन्हें खेती की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। वो खेती की देखभाल कर रहे थे तो डाकू ने उन्हें चुरा लिया। कैसे? डाकू जो हैं कई जो कम बुद्धि के कली के चलचे रहे वो जीवित व्यक्तियों को भी अर्पण कर देते हैं। आज जैसे भोग लगा दिया भगवान को, कभी कभी जीवित व्यक्तियों का भोग लगा देते हैं। तो जत भारत खेती की देखभाल कर रहे थे और ये डाकुओं की इच्छा थी क्योंकि गुरु को एक पुत्र प्राप्त हो, तो वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा पागल जैसा हो तो उसको बलि से काट सके कली के चरणों में अर्पण करने के लिए। तो वो ढूंढ के लाए थे एक पागल व्यक्ति पर वो भाग गया। उसको सजा रहे थे कली के चरणों में अर्पण करने के लिए, वो भाग गया। तो गुरु ने कहा जाओ ढूंढो एक और पागल जैसा व्यक्ति लेकर आओ। तो वो पागल जैसा व्यक्ति कौन था? जत भारत। उसको पकड़ कर आए। तो जत भारत को कली के चरणों में अर्पण करने से पहले स्नान दिया, शरीर को मसाज करवाया, जैसे आप फल वगैरह भोग लगाते हो तो धो के लगाते हो ना भगवान को। तो उन्होंने स्नान करवाया, मालिश कराई, नए कपड़े बनाए। वो जैसे ही काटने वाले थे जत भारत को कली के चरणों में अर्पण करने के लिए, कली अपनी मूर्ति से बाहर निकलकर वही चाकू से उन्होंने इन जत भारत की सुरक्षा की और इन डाकों को काट दिया। आप भागवत में पढ़ते हो अमरीश पुराण की कथा, उन्होंने कहा सभी मुसाई मना कृष्ण पढ़ा दो, मेरा मन सदा आपका चिंतन करे। तो जत भारत भगवान का चिंतन कर रहे थे और ये डाकू उनको काट कर भोग लगाने लगे थे कली के चरणों में, और भगवान ने क्या किया? उनकी पूरी सुरक्षा की। तो जत भारत लंबे थे, तगड़े थे, मैं तो थोड़ा सा संक्षेप में आपको कथा कह रहा हूँ। तो एक समय एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रघुनाथ। महाराज रघुनाथ को पलके में उठाकर ले जा रहे थे कपिल देव के आश्रम में कथा सुनने के लिए। पर आजकल अगर आपको देरी हो रही हो तो आप क्या करते हो, मोटर की स्पीड बढ़ा देते हो, है ना, टिकट वगैरह की चिंता नहीं करता, नहीं करता। तो जत भारत जो थे तो बड़े बुद्धिमान, उनका व्यवहार था जैसे गूंगे हैं बहरे हैं। तो महाराज रघुनाथ को पलकी में उठा कर ले जा रहे थे कथा सुनने के लिए कि राजा ने कहा और तेज चलो। सेवकों ने कहा साहब जितना तेज हम चल सकते हैं चल रहे हैं, हमें और लोगों को जोड़ लेना चाहिए आपकी आपको उठाने में, पलकी को उठाने। तो उन्होंने देखा ये लंबा व्यक्ति गूंगा बहरा पर लंबा हो अच्छे स्वास्थ्य का, तो उन्होंने कहा ए राजा को उठाने में सहयोग दो। तो वो जल भरत मान गए राजा की पलकी को उठाने में। पर फिर जब पलकी को उठाकर जा रहे थे, पलकी को जाना चाहिए था और तेज, इज दैट राइट, क्योंकि राजा कह रहा था मुझे देर हो रही है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पर राजा ने देखा पलकी तेज जाने की बजाय ज्यादा धीमे जा रही है, इट्स गोइंग फास्ट इट्स गोइंग स्लो। तो राजा गुस्सा हो गया, राजा ने कहा क्या कर रहे हो तुम बदमाश लोग, मैं जल्दी में जा रहा कथा सुने और तुम स्लो कर रहे हो। तो दूसरे सेवकों ने कहा राजा यह हमारा दोष नहीं, जो नया आदमी हमने जोड़ा है ये आपकी पलकी को धीमे कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी जो पलकी को उठा रहे थे वो थे शूद्र भूमि के, शूद्र भाव के, और ये जत भारत ये था कौन, ब्राह्मण भाव का। वो अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखता था ये देखे बिना कि जमीन में कोई चींटी है या नहीं, आगे 3 फुट तक देखता था कोई चीटी तो नहीं है, फिर अपने पैरों को नीचे रखता था। जो भक्त है भगवान का वो सब योनियों का मित्र है, सबका शुभ चिंतक है। वो ये नहीं सोचता कि हाँ भगवान ने इन जानवरों को रखा है मेरे चस्के के लिए। तो जत भारत को राजा ने डांटा, राजा ने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं इस पूरे पृथ्वी का राजा हूं। तो शुरू में तो जत भारत ने सही डांट सह ली, फिर जब जत भारत बोलने लगे तो महाराज रघुनाथ समझ गए ये व्यक्ति गूंगा नहीं है बहरा नहीं है पर क्या है, आत्मज्ञानी, सेल्फ रियलाइज। और महाराज रघुनाथ उनके पास ज्ञान था, वो अपनी पलकी से नीचे उठे और जत भारत को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा मुझे विश्व में किसी चीज का डर नहीं है पर एक ही चीज का डर है, क्या है वो, क्या, वैष्णव अपराध का, मुझे वैष्णव अपराध का डर है मुझे। तो जत भारत ने रघुनाथ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, रघुनाथ किसके शरणागत हो गए, जत भारत। तो रघुनाथ ने जत भारत से अनेक प्रश्न पूछे जिनका जत भारत ने उत्तर दिया, और इस अध्याय में और गहराई के साथ जत भारत उपदेश दे रहे हैं किसे, रघुनाथ को। गीता में भी आप देखते हो कि अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे भगवान से, बार बार अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, और क्यों, इसके द्वारा उनकी अज्ञानता। तो जत भारत ने रघुनाथ को उपदेश दिया, रघुनाथ ने कहा मुझे समझ आया है पर पूरा समझ नहीं आया, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, तो कृपा करके मुझे और गहराई के साथ समझाएगा। तो जत भारत ने महाराज रघुनाथ का उद्धार किया, उन्हें उपदेश देगा। तो ये श्लोक में क्या कह रहे हैं जत भारत, वो कह रहे हैं मेरे प्रिय राजा अगर आप एडवांस भक्तों की संगत में रहोगे तो फिर आपके असली ज्ञान प्राप्त होगा और असली ज्ञान के उपयोग से भगवान के धाम लौटोगे इस जीवन में। तो यहाँ भगवान यहाँ कह रहे हैं क्या कि हमें किसकी संगत में रहना चाहिए, एडवांस से बोली वी शुड एसोसिएट विद दोज हु आर मोर एडवांस देन अस। तो यहाँ कहा गया जो हमारे से ज्यादा एडवांस है उनकी संगत में रहो। शास्त्र में नारद मुनि कहते हैं तीन प्रकार के संगत आप प्राप्त कर सकते हो। एक उनकी संगत जो आपसे ज्यादा एडवांस है, एक उनकी संगत जो आपके बराबर के हैं, एक उनकी संगत जो कि आपसे कम एडवांस है। तो जब आपको मौका मिले आपसे ज्यादा जब आपको मौका मिले उन भक्तों की संगत में आने में जो तन मन धन से भगवान के शरणगत हो तो हमें खुश हो जाना चाहिए। और भागवतम के 10वें स्कंद में इस विषय में उदाहरण दिया जाता है कि जब मोर पीकॉक व्हेन दे सी क्लाउड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रेनी सीजन दे डांस इन एक्सटेसी। जब मोर होते हैं, जब देखते हैं बारिश के मौसम में बादल आ रहे तो खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब किसी भक्त को संगत मिले भक्तों की, खास करके एडवांस भक्तों की, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो तीन प्रकार की संगत आप प्राप्त कर सकते हो। एक है उनकी संगत जो आपसे ज्यादा एडवांस है। जब आप उनकी संगत मिलोगे तो आपका क्या स्वभाव होगा, यू विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसा उपदेश सुनने में मिलेगा जिससे क्या अज्ञानता दूर होगी। तो दूसरी संगत है उनकी जो आपके सम्मान के व्यक्ति हो, इक्वल भी हो। जब उनको आप मिलो तो क्या भाव होना चाहिए, उनके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए, फ्रेंडशिप। ये नहीं कि हम उनको ये दिखाएं हम तुम्हारे से आगे हैं। और जब आपको आपसे लेस एडवांस भक्त की संगत मिले तो क्या व्यवहार होना चाहिए, फिर होना चाहिए दया की भावना। फिर हम ये प्रयास करते हैं उनको भगवान का ज्ञान कैसे दिया जाए। तो यहाँ जन भारत कह रहे हैं उनकी संगत में आओ जिनके पास आपसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान है। उनकी भक्तों की संगत में आओगे, साधु संगत सर्वसकाया लावा माता साधु संगत सर्वसिद्धियाया। तो भक्तों की संग में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, नॉलेज, एक है भौतिक दूसरा है आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो गुरु परंपरा द्वारा आता है, इमाम परंपर प्रत्येक मान राजस्व भगवान से आ रहा है ये ज्ञान, इसमें कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। दूसरा है भौतिक ज्ञान जो स्कूलों पाठशाला महाविद्यालय में प्राप्त हो रहा है। ये भौतिक ज्ञान आप जानते हो किसी वक्त भी समाप्त हुआ, भौतिक जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो जब आप उन्हें मिलो जिनके पास आपसे कम ज्ञान है उनके प्रति हमारा भाव होना चाहिए कि हम भी उनका उद्धार करें, उनको किसी प्रकार से भगवान का संदेश पहुंचाएं। तो जत भारत कह रहे हैं भक्तों के संग में आपको ज्ञान मिले। तो ज्ञान है क्या, असली ज्ञान क्या है, राजा विद्या राजा सब ज्ञान हमें सबसे महत्वपूर्ण राजा है। और जब आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो तो उसके द्वारा क्या परिणाम होता है, अज्ञानता दूर हो जाती है। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकारा, जहाँ कृष्ण था ही नहीं माया ने अंधकारा। जहाँ कृष्ण है वहां किसका प्रभाव नहीं रहेगा, जैसे जहाँ सूर्य है वहां अंधेरापन महसूस होता है नहीं होता। तो यहाँ कहा जा रहा है भक्तों की संगत में रहकर ज्ञान प्राप्त होगा और इस ज्ञान के उपयोग से ज्ञान का प्रभाव घटेगा। तो भक्तों की संग में हमें रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्था बनाई अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मानवमित संघ, जिसके केंद्र हैं लगभग विश्व के हर कोने में, और हर कोने में लोग इस संदेश का लाभ उठा रहे हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के। तो भक्तों के संग में रहकर अज्ञानता दूर होती है, और अज्ञानता दूर होती है का अर्थ क्या है, जैसे आपका अध्यात्म ज्ञान बढ़ता है, भौतिक ज्ञान अध्यात्मिक ज्ञान, वैसे अज्ञानता दूर होती है। तो भक्तों के संग में रहोगे तो आपको श्रवण कीर्तन की महिमा का ज्ञान मिलेगा। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, उनके पिता गए थे पर्वत में बड़ी गहरी तपस्या का पालन करने के लिए। क्यों? उन्हें एक वर चाहिए था, उन्हें चाहिए था ब्रह्मा जी की कुर्सी, उन्हें वर चाहिए था कभी। और हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की तपस्या का पालन किया, इतनी गहरी तपस्या कि आप आश्चर्य हो जाओगे सुनकर। एक समय देवताओं के 100 वर्षों के लिए हिरण्यकश्यप ने एक बूंद पानी नहीं पिया, वो पूरा फास्टिंग कर रहे थे। आप तो निर्जल एकादशी साल में एक दिन रखते हो, और सोच के बड़ा चमत्कार कर दिया, पर हिरण्यकश्यप ने देवताओं के 100 वर्षों तक एक बूंद पानी नहीं पिया। उनको ये वर चाहिए था कि वो मृत्यु से बच जाए। तो हिरण्यकश्यप के एक बेटे थे जिनका नाम था प्रहलाद महाराज, जो शुरू से ही आत्मज्ञानी थे, क्योंकि जब वो ये तपस्या कर रहे थे एक दिन इंद्र और देवता प्रहलाद की माँ को घसीट कर ले जा रहे थे। तो वहां पहुंच गए नारद मुनि, उन्होंने कहा क्यों तुम इस निर्दोष औरत को घसीट रहे हो? तो देवताओं ने कहा अब जानते नहीं ये कौन है, ये है श्रीमती हिरण्यकश्यप, और इसके घर में एक असुर बैठा है। तो नारद मुनि ने कहा घबराओ मत, इसके घर में मगर असुर नहीं एक महान संत है। तो उनके कहने पर उन्होंने छोड़ दिया, और नारद मुनि ने माँ को प्रहलाद की माँ को शरण दी कहा अपने आश्रम में। तो प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया था, किसके माध्यम से कौन बताएगा? नारद मुनि के माध्यम से। तो हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को गोद में बिठाया, उनके सिर को पढ़ा और कहा बेटा ये बताओ कि तुमने पाठशाला में क्या सीखा है, सर्वश्रेष्ठ क्या उपदेश प्राप्त किया है? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने उम्मीद की थी कि बेटा कहेगा आप हो सबसे उत्तम, और बेटे ने उल्टा क्या कहा, क्या कहा, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तो नवदा भक्ति शुरू होती है किसके साथ? श्रवणम और कीर्तनम के साथ। तो यह कहा जा रहा है कि अगर आप एग्जॉल्टेड डिवोटीज की संगत में रहोगे तो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, और इस ज्ञान से अज्ञानता को दूर कर सकोगे। और तो ये ज्ञान हमें भक्तों के संग में प्राप्त होता है। जैसे आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब इस्कॉन में कैसे जुड़े हो, किसी न किसी कारण, ग्रंथों के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से, सच बात है हाँ? या किसी ने आपको ग्रंथ दिया, आप ग्रंथ को पढ़ने लगे और फिर आप मंदिर गए, या दूसरा क्या उपाय है, किसी ने आपको प्रचार किया। तो किसी की न किसी माध्यम से हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, प्रमाणिक ज्ञान, और इस ज्ञान का पालन करोगे तो जो भौतिक आकर्षण है हृदय में वो दूर होगा। ये कहा गया है कि हमारा जो हृदय है कोले से भी ज्यादा कोला है, काला है. क्यों? क्योंकि हृदय में अनेक प्रकार के भौतिक विचार है, और अगर आप इनको दूर करना चाहते हैं तो उपाय, दवाई लेनी पड़ेगी. जैसे अगर आपको कोई गहरी बीमारी हो जाए तो इसके इलाज आप कैसे करते हो? कैसे करते हो बीमारी का इलाज? डॉक्टर दवाई और परहेज, दोनों की आवश्यकता है. दवाई लोगे और परहेज नहीं लोगे तो दवाई का असर पड़ेगा. आपको डायबिटीज की बीमारी है, अब दवाई लोगे फिर साथ में रसगुल्ला भी खाओगे तो असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? पिता, मुझे जो उपदेश प्राप्त हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है ये नवदा भक्ति के विषय में. और पिता ने जब ये सुना, निर्दोष बेटे को गोद से उठाकर नीचे पड़क गए. तो यहाँ जो उपदेश दिया जा रहा है इसका हमें लाभ उठाना चाहिए. यहाँ कहा जा रहा है भक्तों की संग में रहना चाहिए. भक्तों की संग में रहकर आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा. उस आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से आप अज्ञानता को दूर कर सकोगे. दूसरे शब्दों में, जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करो, शास्त्र पढ़ो, तो इसके द्वारा अज्ञानता जो है दूर होती है. इसीलिए शास्त्र में क्या लिखा है? साधु संत. प्रभुपाद जी एक महान संत है जिनके मन में एक ही भाव था, विश्व का उद्धार. आप जानते हो कि प्रभुपाद जी को बड़ी कठिनाई से सुविधा प्राप्त हुई थी अमेरिका जाने के लिए, है ना? और प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों जाना चाहते थे, क्यों, कौन बताएगा? उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था. 1921 में जब उस समय श्रीला प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के आंदोलन के सदस्य थे, उनके एक मित्र ने उनसे कहा, यहाँ एक बड़ा महान संत है, चलो उसे मिलने के लिए. पापा जी ने कहा, मैं तो कई संतों को मिल चुका हूं, मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ. क्योंकि पापा जी के पिता का नाम था गौरमोहन डे. गौरमोहन डे बकायदा संतों को निमंत्रण देते थे अपने घर में. पर पापा जी के मित्र ने कहा, तो ये संत दूसरे संतों जैसा नहीं, असली संत है. और प्रभुपाद जी ने कहा, लगभग मेरा मित्र मुझे घसीट कर ले गया. कहा? भक्ति सिद्धांत जी को मिलने के लिए. जब भक्ति सिद्धांत जी को मिले क्या करा मैं, तो भक्ति सिद्धांत जी ने देखा ये युवक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है और अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान भी है. तो भक्ति सिद्धांत जी ने उन्हें कहा, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, जीवन समर्पण करो भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने में. और भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने में जीवन का समर्पण करो. प्रभुपाद जी ने कहा, कौन सुनेगा हमारे संदेश को? पहले हमें अपने देश को स्वतंत्र बनाने दो, फिर उम्मीद कर सकते कि लोग सुनेंगे. भक्ति सिद्धांत जी ने यह साबित किया कि असली स्वतंत्रता क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा, वो है रियल फ्रीडम. तो बाकी असली नहीं है. तो प्रभुपाद जी के मन में यह भाव बैठ गया. भक्ति सिद्धांत जी के शब्दों को उन्होंने बड़ा गहरा ध्यान दिया और जिंदगी भर यही सोच रहे थे कैसे गुरु का आदेश पूरा किया. प्रभुपाद जी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आए थे और सूर्य ग्रहण के समय आप जानते हो हजारों संत महात्मा वहां आते हैं. तो एक औरत आई थी उधर जिसके पानी के जहाज चलते थे सारी दुनिया में, जिनकी कंपनी का नाम क्या था किसको पता है? सिंधिया नेविगेशन. तो ये औरत बड़े धार्मिक विचार की थी, इनका नाम था श्रीमती मुरारजी. किसी ने प्रभुपाद जी को कुरुक्षेत्र में कहा, यहाँ एक बहुत धनी औरत आई है जिसके पानी के जहाज सारी दुनिया में जाते हैं. के गुरु ने तो आदेश दिया था ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में, और प्रभु जी का प्रयास था भारत में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, वही इतनी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तो प्रभु जी के मन में यही भाव था गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। तो इस विचार के साथ प्रभु जी श्रीमती मणाल जी को मिले, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का ऑर्डर है चैतन्य महाप्रभु संदेश को पश्चिम देश में पहुंचाऊं। तो श्रीमती मणाल जी ने प्रभु जी को निमंत्रण दिया और मेरे घर में आना बॉम्बे। तो प्रभु जी फिर बॉम्बे आए श्रीमती मणाल जी को मिलने। आप में से कितने भक्तों ने हमारा बॉम्बे का मंदिर देखा है? तो श्रीमती महाराज जी का जो घर है हमारे जू के मंदिर के थोड़ा दूरी है, और जब प्रभुपाद जी श्रीमती महाराज जी के घर जा रहे थे तो जो हरे कृष्ण लाइन जू में है ना, वो उस समय एक बड़ा जंगल था, और प्रभुपाद जी ने उस वक्त प्रभुपाद जी के पास जेब में एक पैसा नहीं था। वो प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, अगर आप एक दिन मुझे जमीन दोगे तो आपके लिए मैं बड़ा खूबसूरत मंदिर बनाऊंगा। देखो प्रभुपाद जी की भगवान में असीम शक्ति थी, क्योंकि आज हम लेक्चर भी दे रहे हैं और प्रभुपाद नाइट के विषय में, प्रभुपाद जी के विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी अब श्रीमती महाराज जी को मिले, श्रीमती महाराज जी ने कहा आप 70 साल की उम्र में और मैं कहां जाओगे, ये उम्र थोड़ी है विदेश जाने की। और उनके एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी की हंसी उड़ाई, कहा तो स्वामी जी अमेरिका जाना चाहते हो देखने के लिए, मतलब घूमने। तो प्रभुपाद जी ने कहा अमेरिका जाना चाहता हूँ घूमने के लिए नहीं, पर किस लिए? लोगों का उद्धार करने के लिए। जो संत महात्मा हैं वो सबका भविष्य सबका सुख देखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि अध्यात्मिक ज्ञान के बिना समाज में क्या है, क्या है? निराशा है, बेचैनी है, दुख है, क्लेश है। इसके लिए संतों का हमेशा ये प्रयास रहता है किसी न किसी रूप से हरे को जोड़ा जाए, किसके साथ? भक्ति योग के साथ। जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आपका पूरा मंदिर भरा हुआ है। मुझे याद है जब हम कई साल पहले आते थे यहाँ पौनकई में, जो छोटा सा मंदिर था, है कि नहीं? अब देखिए एक श्री निकेतन प्रभु सब ने मेहनत की, ये बड़ा मंदिर है, तो ये हॉल भी फुल है और आगे का हॉल भी फुल है ना? हाँ, पीछे भी फुल है। तो लगता है आपको बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा। तो जो संत महात्मा हैं वो सबको सुखी देखना चाहते हैं, और वो प्रभु ये जानते हैं कि भौतिक प्रयास से सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको असली सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के शरण। तो प्रभुपाद जी ने श्रीमती महाराज जी ने तो पहले बड़ा प्रयास किया कि प्रभुपाद जी विदेश जाने का भाव छोड़ दे, पर जब उसने देखा कि स्वामी में बड़ा दृढ़ भाव है विदेश ये चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को वहां पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने उनको सुविधा दी। क्या सुविधा दी? एक कार्गो शिप था। कार्गो शिप किसको कहते हैं मालूम है? जिसमें माल जाता है, कोई पैसेंजर नहीं जाता। तो उन्होंने उन्हें कार्गो शिप में जाने की मुफ्त की टिकट दे दी थी, और क्योंकि वो धार्मिक ऑर्डर थी उन्होंने अपने सेक्रेटरी को साथ में भेजकर प्रभुपाद जी को थोड़े गर्म कपड़े भी खरीद कर दे दिए थे। और प्रभुपाद जी भारत से निकले, 200 श्रीमद् भगवतम प्रथम स्कंद फर्स्ट कैंडो की वॉल्यूम कॉपी लेकर और एक ढोलकी लेकर निकले। और कितने रुपए के साथ निकले थे प्रभुपाद भारत से? 40 रुपए के साथ। आजकल आपके 40 रुपए का $1 भी नहीं बनता। और प्रभुपाद का कोई जान पहचान नहीं था अमेरिका में, केवल एक व्यक्ति ने सहयोग दिया था तो उसके बेटे का परिचय था जो पेंसिल्वेनिया में रहता था, और प्रभुपाद जी जब जहाज में थे, जहाज में जब थे वो जहाज के कैप्टन का नाम था मिस्टर पांडे। कई साल पहले वो मुझे सियाटल में मिलने आया था, मिला था। उसकी पत्नी थी एस्ट्रोलॉजर, तो उसकी पत्नी ने प्रभुपाद जी के हाथ को देखा और प्रभुपाद को कहा, तुम्हारी योजना जरूर सफल होगी, तुम एक घर बनाओगे जिसमें सारे विश्व के लोग रह सकेंगे। और आगे जब प्रभुपाद जी पानी के जहाज की यात्रा में थे तो उन्हें रास्ते में दो हल्के हार्ट अटैक हुए। जब दूसरा हार्ट अटैक हुआ तो प्रभुपाद जी को लगा कि अब वो ज्यादा देर नहीं जी पाएंगे, और वो सोच रहे थे कि अमेरिका पहुंचकर मैं भारत वापस लौट जाऊंगा। पर तीसरी रात को उन्हें फिर एक सपना आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाव चला रहे थे, और जिसमें प्रभुपाद बैठे थे। और भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा, अबे बाबू घबराओ मत, तुम्हारी योजना अवश्य ही सफल होगी। इससे प्रभुपाद जी का हौसला बढ़ गया और फिर प्रभुपाद बोस्टन में पहुंचे। जब प्रभुपाद बोस्टन में पहुंचे तो उन्हें वहां उन्होंने देखा अमेरिकन लोगों का स्वभाव, सब इंद्रिया तृप्ति में जुड़े हुए हैं छोटी सी आयु से। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे, कौन सुनेगा चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश में इस पाप की भूमि में। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने 500 साल पूर्व क्या भविष्यवाणी दी थी, क्या भविष्यवाणी कौन बताएगा? What was Lord Chaitanya's prediction 500 years ago? पृथ्वी आते ज्यादा नगर आदि का सर्वतः प्रचार नाम, विश्व में जितने नगर हैं गांव हैं सब जगह क्या पहुंचेगा, यह हरि नाम पहुंचेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद जी के गुरु, उन्हें पूरा विश्वास था कि ये भविष्यवाणी सत्य होगी। भक्ति सिद्धांत जी ने अपने कई शिष्यों को भेजा था विदेशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर ज्यादा सफलता के बिना वो लौट गए थे। और प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उनके गुरु की इच्छा पूरी होगी। तो जब प्रभुपाद जी ने देखा ये स्थिति को बोस्टन में, प्रभुपाद जी ने कविता लिखी। प्रभुपाद जी का एक और नाम था कवि गोड़िया मठ में, क्योंकि प्रभुपाद जी कविता लिखते रहते थे, उनके सन्यासी भाइयों ने कवि नाम दे दिया था। तो प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी बोस्टन में पहुंचने पर, जहाँ की उन्होंने कहा कि आप मुझे इस भूमि में ले आए हो पाप की भूमि में, तो कौन स्वीकार करेगा आपके संदेश को। पर आगे उन्होंने ये भी कहा, पर राधा रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। और इस हौसले के साथ प्रभुपाद जी आगे बढ़े। तो प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त थे जिन्होंने हमें भगवान का शुद्ध संदेश दिया है, विदाउट एनी एडल्टरेशन, बिना किसी बनावटी के। प्रभुपाद जी ने हमें क्या संदेश दिया है, जो कि परम भगवान ने दिया। प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता को प्रकाशित किया उसको किस नाम से प्रकाशित किया, भगवद गीता यथर्व रूप, Bhagavad Gita as it is. So sometimes people ask us, what is the difference between Bhagavad Gita as it is and the other Gitas? And we explain. The Bhagavad Gita yathrup kyun kaha? Ki Bhagavan Prabhupada ji ne Bhagavan ke sandesh ko yathrup prastut kiya. So yehi Srila Prabhupada aapke desh mein bhi aaye the, hai na? When did Prabhupada come to Mauritius? 75. Prabhupada ji bade prabhavit hue the us samay Mauritius ka haal dekhkar, aur aapke Ramgulam Pradhan ka mandir ko bhi mile the. Aur Prabhupada ji ne kya kaha tha? Mauritius can become the first Krishna conscious country on this planet. Mauritius is prithvi par pehla pura Krishna conscious desh ban sakta hai. Agar aap log ye bandesh Krishna bhakti se bharna chahte to kya karna padega? Aap sabko prachar karna padega. Chaitanya Mahaprabhu ji ne apne bhakton ko bulaya aur unhone kaha ghar ghar jaakar prachar karo. और उन्होंने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को बोला, घर घर जाकर क्या करो? सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो. क्या प्रार्थना? बोलो कृष्णा, कृष्णा का नाम लो. भाजो कृष्णा, कृष्णा का क्या करो? उपासना करो, पूजा करो और करो कृष्णा शिक्षा. कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ. कृष्णा की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? कहाँ ग्रंथों में, खास करके भगवत गीता में और भगवत में. आप में भगवत गीता आप में से कितने भक्तों के पास भगवत गीता की कॉपी है? और आप में से कितने भक्त हो जो भगवत गीता को रोज पढ़ते हो? बस. और कितने भक्त हो जो रोज टेलीविजन देखते हो? तो भगवत गीता हमें रोज पढ़ना चाहिए. रोज भगवत गीता में क्या है? भगवान की वाणी. और भगवान की वाणी किस लिए? मानव समाज के उद्धार के लिए. तो भगवत गीता हमें रोज पढ़ना चाहिए. गलत है कि ठीक है? हिंदी ये भगवत गीता प्रकाशित हो गई है 70 से अधिक भाषाओं में. दिस गीता हैज बीन ट्रांसलेटेड मोर देन 70 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. और आज सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है और गीता में दिव्य ज्ञान है जिसके उपयोग से हम हमारी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं. तो ये था प्रभुपाद जी का चमत्कार. प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की स्थापना की. तो थोड़े समय में ही प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति की स्थापना सारे विश्व में कर दी. और आज कृष्ण भक्ति के केंद्र हैं विश्व के हर कोने में. आज आप विश्व के किसी कोने में जाओ, आपको इस्कॉन का केंद्र प्राप्त होगा. 500 से ज्यादा केंद्र हैं सारे, 500 से ज्यादा केंद्र हैं सारे विश्व में. तो आप सब भक्तों से एक खास निवेदन है, आप सब एक घर घर जाकर प्रचार करो. क्या प्रचार? कृष्णा की शरण लो, कृष्णा का नाम लो, कृष्णा के उपदेश को स्वीकार करो. ये है मन की शांति का उपाय. आज हम सब शांति की खोज में हैं. सच बात है, झूठ बात है? आप सबका मन शांत है या अशांत है? हाँ, अशांत. अशांत या शांत? अशांत. समाज में रोज क्लेश बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? बाजार में महंगाई बढ़ते जा रही है या सस्ते हो रहे सामान, हर प्रकार का क्लेश बढ़ते जा रहा है। और इसका कारण क्या है? हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। आज हम सबके मन में चिंता है, तनाव है, एंग्जाइटी है कि नहीं? तो हमें चिंता से बचने के लिए ड्रग्स लेते हैं, शराब लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, यही पीते हैं। पर अगर आप भगवान के नामों को उच्चारण करो तो आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कली काले नामा रूपा कृष्णा अवतार। इस कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं किस माध्यम से? हरि नाम के माध्यम से। आप ऐसे कितने भक्त इस सभा में जो रोज 16 माला का जाप करते हो? तो मैंने तो सोचा था सब इस सभा में 16 माला का जाप करते हैं। और कितने भक्त आप में से जो लगभग 8 माला का जाप करते हैं? तो माला का जाप कीजिए। इस कलयुग में दोष ही दोष है, कले दोषे दे दे राज है। प्रेक गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? भगवान के नामों का उच्चार। तो आप सबसे निवेदन है, अगर आप मन की शांति चाहते हो, अगर आप जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, अगर आप क्लेशों से बचना चाहते हो, तो हमें क्या करना चाहिए? परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। और परम भगवान के शरणागत होने का माध्यम क्या है? एक, चैंट हरे कृष्णा। दूसरा, रीड भगवद गीता और भागवतम, गीता पढ़ो भागवतम पढ़ो। तीसरा, साधु संगत में रहो, कम से कम हफ्ते में एक बार दो बार मंदिर आइए, कृष्ण बलराम जी का दर्शन लीजिए, राधा गोकुलनंदन का दर्शन लीजिए, पर मंदिर में आइए, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ। हर रविवार को इस्कॉन के केंद्र में ये संडे प्रोग्राम होता है, और आपके मॉरिशस में तो 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, पर इसके अलावा 6-7 प्रीचिंग सेंटर भी खुल चुके हैं, उनका भी लाभ उठाइए। तो दूसरे शब्दों में साधु संगत का लाभ उठाइए, और इस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। तो प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनकी इच्छा थी कि पूरा समाज सुखी बने। आप सब पर प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद जी आपके देश में भी आए थे, और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस देश में हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति को स्वीकार करे। तो आप सब कृष्ण भक्ति को दीजिए, घर घर जाकर कृष्ण भक्ति को उपदेश दीजिए, इसके द्वारा समाज सुखी होगा। और हम जो खाएं, तो हमें क्या खाना चाहिए? केवल कृष्ण प्रसाद। और कृष्ण प्रसाद खाओगे, कृष्ण प्रसाद खाने से और मंत्रों का उच्चारण करने से अशुद्ध मन क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। तो आप सब धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था 9 बज गए हैं, इसलिए था सब हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। अभी प्रसाद शुरू नहीं हुआ, प्रसाद सर्व हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।